ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना सकार की।
ओम शांति। एक बार हम सब गहरी श्वास लेकर और उसके बाद साथ साथ ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति। ओम शांति का यह महामंत्र ही हम सबको अपने स्वधर्म में स्थित कर देता है। ओम शांति के साथ साथ हमारे जो और अन्य भी आत्मा के गुण हैं उनकी भी स्मृति आवश्यक है, और इसीलिए दादी जानकी जी कई बार क्लास में हम सबसे कहलवाती हैं। जैसे हम ओम शांति कहते हैं तो आत्मा के अन्य गुण भी हम स्मृति में रखें, और समय प्रति समय यह भी कहें ओम सुख, ओम आनंद, ओम पवित्रता, ओम प्रेम, ओम शक्ति, ओम ज्ञान। इस प्रकार से आत्मा के सभी सातों गुणों का चिंतन समय प्रति समय करेंगे तो केवल शांति में ही नहीं बल्कि आत्मा के जो अन्य गुण हैं उनमें भी हमें स्थित होने में बहुत सहयोग मिलेगा। साकार ब्रह्मा बाबा तो इन सब गुणों की जैसे प्रतिमूर्ति थे, और बाबा के एक एक कर्म से ही नहीं बल्कि एक एक कर्मेंद्रियों से भी इन गुणों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता था। वैसे तो बाबा से कई बार मिले, 1962 से जब से ज्ञान में आए, लेकिन समय प्रति समय हर बार जब भी बाबा से मिलते थे सदैव ही कुछ नई अलौकिक और विचित्र अनुभूतियां बाबा के सम्मुख जाने से ही हुआ करती थी। हम सबने पढ़ा है बाबा की जीवन कहानी में कि जो बाबा प्रतिदिन मुरली में लगभग नियमित रीति से ही हर मुरली में बाबा का आता है, कौन सा अभ्यास पक्का करने का, अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा। तो केवल मुरली में कहने तक ही नहीं बल्कि बाबा ने खुद यह अभ्यास इतना पक्का कर लिया था मैं आत्मा हूं कि जिसको भी बाबा दृष्टि देते थे, जिसके तरफ भी बाबा के नैन घूम जाते थे, वो आत्मा स्वतः ही कुछ समय के लिए ही सही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाती थी। हमने अनेक बार अनुभव किया, अपने इन आंखों से देखा, जब भी कोई बाबा से मिलता था बस बाबा के हाथ ऐसे बढ़ जाते थे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन। और जैसे ही बाबा के हाथ आगे बढ़ते थे, एक जैसे चुंबकीय आकर्षण जैसा अनुभव होता था और न चाहते भी स्वतः ही बाबा की बाहों में खींच करके चले आते थे। बस बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ और आत्मा जैसे कि अशरीरी अनुभव करती थी, विदेहीपन का अनुभव करती थी, क्योंकि बाबा को अपना अभ्यास इतना पक्का था, जिस पर भी दृष्टि जाती थी वो भी अशरीरी हो जाता था। उसके बाद थोड़ा समय बाबा की बाह में रहते थे, फिर बाबा ऐसे थपथपाते थे, हाँ बच्चे आओ आओ, हाँ बच्चे, जैसे आत्मा कोई जाति नहीं है, लेकिन आत्मा जैसे देह भान से मुक्त हो जाती थी, फिर जैसे कि बाबा आत्मा का आवाहन करते थे, हम सब जो बाबा के शक्ति से कुछ समय के लिए विदेहीपन की स्थिति का अनुभव करते थे, फिर जैसे कि देह में आते थे, बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, परिचय पूछते थे, क्या नाम है, कहाँ से आए हो आदि आदि, और बस उन कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में ही ऐसी अनुभूति हो जाती थी। देह अभिमान का तो पाठ जन्म जन्मांतर तक पक्का किया हुआ है, उसमें तो रहते ही हैं, लेकिन ये विचित्र अनुभूति देह से न्यारेपन की कुछ क्षणों में ही बाबा करा देते थे। इतनी शक्ति बाबा बच्चों को देते थे। फिर एक अनुभव करता था, वो जाता था, दूसरा आता था, दूसरे को भी ऐसी अनुभूति होती थी, तीसरे को भी ऐसी अनुभूति होती थी। तो ये अनुभूति वो ही करा सकता है जिसने खुद ये अनुभव किया होगा, बहुत गहरा आत्मिक स्थिति का। हम सब ने भी वो कहानी सुनी है ना, कि किसी महात्मा के पास कोई माता आई, बच्चा बहुत गुड़ खाता है बापू जी, तो उसको कहा गया 15 दिन बाद आना। फिर वो 15 दिन बाद लेके गई तो बस यही कहा महात्मा जी ने कि बच्चे गुड़ नहीं खाते, गुड़ खाने से ये तकलीफ हो जाती है। और माता को कहा कि ठीक है ले जाओ, तो माता को आश्चर्य हुआ, उसने पूछा कि ये तो बात आप पहले भी कह सकते थे, तो हम सबको मालूम है। हाँ, क्या कहा उन्होंने कि पहले मैं खुद भी गुड़ खाता था, और मैं अगर ये कहता गुड़ नहीं खाओ तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता और ये बच्चे में परिवर्तन नहीं आता, तो पहले मैंने इन 15 दिन में गुड़ खाना छोड़ा, उससे वाणी में भी इतनी शक्ति भरी कि जो वाणी से बोल निकला वो उसने तुरंत असर दिखाया। तो इसलिए बाबा भी ये कहते हैं कि किसी को भी, अभी बाबा अक्सर कहते हैं कि अनुभूति कराओ। बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन अब सुनने की बात, सुनाने की बात नहीं ज्यादा, अब अनुभव कराने की बात है। और जितना जितना अनुभव खुद किया होगा उतना दूसरों को भी अनुभव करा सकेंगे। और अनुभव कब होगा? जब बाबा ने कहा ये तीनों सेवाएं साथ साथ होंगी, जो बाबा से प्रत्यक्ष देखने को मिलती थी। कौन सी तीन सेवाएं? जब भी बाबा से मिलते थे तो बाबा मंशा से सकाश देते थे, शक्ति देते थे, बस दृष्टि दी और सकाश का फ्लो शुरू हुआ। एनर्जी जैसे हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ आती है, शक्ति ऐसी, बाबा तो शक्तियों का भंडार। तो इसलिए कोई भी आत्मा जब मिलती थी तो उससे उसे ये अनुभूति होती थी, उसके अंदर इतना बल बढ़ता जा रहा है, सारी निगेटिविटी कमजोरियां खत्म होती जा रही हैं, और बस वो भी शक्ति का एक पुंज आत्मा जैसे बनती जा रही है। तो मंशा से सकाश, मुंह से वाणी से ज्ञान का वर्णन, और कर्मों से गुणों का, शक्तियों का, उन सब का दान। जैसे हर व्यक्ति का ऑरा होता है, लाइट का ताज दिखाते हैं ना देवी देवताओं या महान आत्माओं के पीछे लाइट, ऐसे ही हम सब के लाइट का ताज हम सब के पीछे है, लेकिन उन्हें इन आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें खास विशेष प्रकार के कैमरों से देखा जा सकता है, जिसे किरलियन फोटोग्राफी कहा जाता है, और उससे वो लाइट का ताज भी जैसे आ जाता है। और जिसकी जितनी भावनाएं शुद्ध पवित्र महान होती हैं, उसका लाइट का ताज उतना ही बस वाइट येलो गोल्डन कलर का होता है, और जिसमें जितनी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत बदले की भावना नेगेटिविटी, उतना उतना ये लाइट नहीं हेजी होती है और डार्क कलर का वो आता है। ये एक्चुअल, हम भी जब रशिया गए थे तो किरलियन इंस्टीट्यूट वाले आए थे, उन्होंने बहुत बीकेस का निकाला हुआ था ये ऐसा ऑरे का लाइट, हमारा भी निकाला, और वो सबका दिखा रहे थे कि कैसे बीकेस वालों के ब्रह्मा कुमारी में जो जाते हैं उनका ये लाइट का ताज और संसार वालों की तुलना में ज्यादा प्रकाशवान होता है। तो इस प्रकार से हम सब ये जितनी जितनी आंतरिक शक्तियां धारण करते जाते हैं, उतना उतना हमारा आंतरिक ये ऑरा जो है, वाइब्रेशंस जो है पॉजिटिव, ये शक्तिशाली हो जाती हैं। और बाबा से प्रत्यक्ष अनुभव होता था, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, बस बाबा के सानिध्य, जैसे प्रकाश में आते हैं पता चल जाता है ये प्रकाश है, ठंडी में आओ पता चल जाता है अनुभव ठंडी है, गर्मी में जाओ गर्मी का अनुभव होता है, सुगंध कहीं से आ रही है सुगंध का तुरंत अनुभव होता है। ऐसे ही बाबा के सम्मुख जाते ही तुरंत ही लाइट माइट शक्ति इन सब का ऐसा एहसास होता था, बस ये अनुभव होता था हमारे अंदर से जैसे ये कमी कमजोरियां सदा के लिए विदाई ले रही है। तो एक तो बाबा का, बाबा ने इतना अपने ऊपर पुरुषार्थ किया था, स्वयं को लिख लिख कर भी पक्का किया था, डायरी में हम लोगों ने जीवन कहानी में पढ़ा है, डायरियां लिखी बाबा ने, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, निर्मल आत्मा है, नारायण आत्मा है, जो जो बाबा की युगल बेटा बेटी आदि आदि सबको जहां जहां बुद्धि जा सकती है बाबा ने पक्का किया था। और दूसरी डायरी में क्या पक्का किया हुआ था, बाबा हमेशा कहता है कि रोज अपनी दरबार लगाओ। किसकी दरबार? जो हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार आदि, रोज इनकी दरबार लगाओ। तो बाबा भी ब्रह्मा बनने से पहले 60 वर्ष की आयु तक बाबा भी साधारण गृहस्थ था, हीरे जवाहरात का व्यापारी था, और पत्नी थे, पुत्र पुत्रियां थी, 2 पुत्र 3 पुत्रियां, और भरा पूरा परिवार, व्यापार, हीरे जवाहरात का सब कुछ बुद्धि को अलग अलग जहां जहां भटकने के अनेक अनेक साधन मौजूद थे। इसलिए जब बाबा 60 वर्ष की आयु के बाद ये ज्ञान हुआ, तो ज्ञान होना एक चीज है मैं आत्मा हूं, लेकिन ये अनुभव में स्थित होने में बाबा को ये अनुभव होता था कि ये मन बार बार भाग जाता है, क्या करें इसका। तो बाबा ने क्या करा, मन को पत्र लिखा। देखो बड़ा विचित्र, मन सूक्ष्म चीज, कैसे बाबा ने पत्र लिखा, गौर से सुनना कुछ लाइनें बाबा ने, क्योंकि हम सबको भी यही पक्का करना है, कर्मातीत अवस्था की तरफ जाते जाएंगे जितना हम, और इसीलिए मन पर हमारी जीत होती जाएगी, तो इसीलिए कहा गया है मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मन के लिए ही कहा है, हाँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो बाबा ने जो ये सब बातें अनुभव करी और कि मन बार बार भाग जाता है, तो बाबा ने मन को पत्र लिखा। क्या लिखा बाबा ने, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे वश में होना चाहिए क्योंकि मैं राजा हूं, लेकिन तू इतना बलशाली हो गया, शक्तिशाली हो गया कि तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, और तू शक्तिशाली हो गया, तूने मुझ आत्मा के ऊपर जैसे विजय पा ली, और तू जहां जहां कहता रहा मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहा, चलता रहा, तू मुझे भटकाता रहा मैं तेरे पीछे पीछे भटकता रहा, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया, अब मुझे ज्ञान हुआ है अपना, मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा मंत्री है, इसलिए अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा क्योंकि मैं राजा हूं और तू मेरा मंत्री है। इस तरह बाबा ने आत्मा राजा की अपनी स्वस्थिति में स्थित हो करके मन को ऑर्डर किया कि अब मैं, हे मन, अब मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे नहीं भागूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। तो हम भी जब अपनी कर्मातीत अवस्था की तरफ धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, तो हमें भी ये देखना है कि मन को मैं ऐसा ऑर्डर करता हूं, करती हूं, कि मन मेरी इच्छा के विरुद्ध इधर उधर कहीं ना जाए। मन, मैं जहां मन को ले जाना चाहूं वहीं मन मेरा जाए, जो मैं संकल्प दूं मन को वही मन सोचे। और इस प्रकार से बाबा ने मन को पत्र लिखा, और ऐसे ही बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के पीछे पीछे चलती रही, मन के साथ साथ चलती रही, और तुम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत शक्तिहीन कर दिया, मैं तुम दोनों के पीछे पीछे जैसे भटकता रहा, लेकिन हे बुद्धि, अब मैं तुझे भी कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा अब अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, अब मन मंत्री और बुद्धि सेनापति, तुम दोनों को मेरे कहने पर मेरे पीछे पीछे चलना पड़ेगा, और इस तरीके से अब मुझे ये करना है, मन बुद्धि को ऑर्डर करके उनको अपने नियंत्रण में करना है। तो बाबा ने ये पत्र लिखा, ये पत्र की डायरी भी बहुत समय तक तो मौजूद थी, और बाबा ने ये कह के बस धीरे 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 बाबा मन बुद्धि को नियंत्रण में करके अपनी कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वही बाबा एक तो हमसे चाहता है कि हम भी किस प्रकार से, ये न कह दें कि क्या भक्ति मार्ग में जैसे कहते रहे मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, क्या करें, नहीं, हमें किसी भी तरह करके मन पर नियंत्रण करना है। और क्या हुआ, बाबा जैसे कहता है ना, मन का काम है बार बार संकल्प करना, भागना। जब भी ध्यान में बैठेंगे, योग में कोई भी अच्छा चिंतन करेंगे, मन भाग जाता है जहां जहां मन को ठिकाने दिए हुए हैं हमने, परिवार में, धंधे में, संबंधियों में, आदि आदि, मन भाग जाएगा। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है जो बाबा ने भी रखा, अगर मन अभी भी भाग रहा है तो अंत में भी भागेगा। और जो गायन है अंत मते सो गति का, तो अगर मन अंत में भाग गया कहीं देहदारी की तरफ, कहीं और अन्य संबंधियों की तरफ, तो फिर तो सदगति होगी नहीं। इसीलिए अभी से ही हमें मन को यह ठिकाना देना है कि मन हमारा न भागे। तो बाबा ने यह अभ्यास किया तो क्या, इससे क्या होता था, इसकी पहचान क्या है कि मन हमारे नियंत्रण में होता जा रहा है। तो पहले हम लोग जब बाबा के पास जाते थे, बाबा से मिलते थे, बाबा हालचाल पूछा करते थे और बाबा कहते थे कि हाँ कोई प्रश्न है, कोई हम लोग प्रश्न पूछा करते थे, समस्या कोई होती थी रखते थे, बाबा उसका समाधान करते थे। काफी समय बाबा देते थे एक एक बच्चे को, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। और जब लगभग 1966-67 हुआ, हम देखते थे 1966-67 के करीब जब बाबा से मिलते थे, बस बाबा से मिले और थोड़ा ही बाबा को कुछ बताया, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया। बाबा अभी तो हमने बोलना ही शुरू किया है, अभी तो पूरी बात कही भी नहीं, कि नहीं बच्चे बाबा समझ गया, और बाबा तुरंत उसका समाधान कर देते थे, थोड़े शब्दों में बाबा सुना करते थे। लेकिन अंतिम दिनों में 17-18 जनवरी 1969 हमें यह सौभाग्य प्राप्त है, जैसा बहन जी बता भी रहे थे, हम बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे इंजीनियरिंग पास करके, और शिव सागर उधर आसाम में वहां पर पोस्टेड थे, और बस अंतिम समय में बाबा ने अपने पास बुला लिया। तब विदेशों में भी कोई सेंटर नहीं था, 68-69 की बात है, 68-69 की, वहां जाने को हमारी बहुत दिल नहीं थी, हमारी पोस्टिंग उधर हुई थी। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाबा ही भेज रहा है तुम्हें, और वहां पर बाबा के बहुत भोले भाले बच्चे वहां पर हैं, और वहां जाओ, उन्हें संदेश दो। तब तक आसाम में पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक भी सेंटर नहीं था, एक भी सेवा केंद्र नहीं था। तो बस पहली बार 1968 के शुरू में, 1968 के शुरू में ही बाबा ने वहां भेजा, और बस बाबा का पत्र आ जाता था कि बच्चे हाँ वहां लेख के पास जाके सर्विस करो, वहां शिव मंदिर है वहां पर जाके सेवा करो, चित्र खोल के बैठ जाओ, और बस जो जो बाबा कहता था वो करते जाते थे। और बस बाबा का चमत्कार, बाबा की इतनी अद्भुत शक्ति कि थोड़े समय में ही बहुत बहुत आत्माओं को बाबा का ज्ञान मिला और बाबा को उन्होंने पहचाना। और अधिकतर आत्माएं, क्योंकि हम भी नए थे, ज्ञान का सुनाने का बहुत अनुभव नहीं था, आयु भी ऐसे 21-22 वर्ष की थी, तो बस वो आत्माएं आती थी, ज्ञान सुनते सुनते ही ध्यान में चले जाते थे। साक्षात्कार बाबा का, स्वर्ग का, लक्ष्मी नारायण का, नई दुनिया का साक्षात्कार कर लेते थे। और इस प्रकार से सभा बहुत 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 बढ़ती चली गई। तो वहां पहले हमारे जाने की दिल नहीं थी, लेकिन बाबा ने कहा था बच्चे जाओ, बस वहां आत्माएं बैठी हैं, बस संदेश दोगे बाबा आत्माएं तुरंत निकल आएंगी और समय पर बाबा बुला लेगा। उस समय तो हमने समझा नहीं समय पर बुला लेगा, लेकिन बस वहां गए और ऐसा बाबा ने युक्ति रची, हमें उधर आना था। हमने बाबा को लिखा, बाबा हमें हम देहरादून से गए थे वहां पर, तो बाबा हमें वहां जाना है, म्यूजियम बन रहा है, बहन जी ने लिखा है कि कुछ समय छुट्टी लेके आ जाओ। तो बाबा ने तुरंत ही उत्तर दिया कि ठीक है वहां जाना, लेकिन उससे पहले यहां मधुबन आओ, बाबा के पास आओ और तुरंत आओ। तो हम तुरंत ही पहली बार ही प्लेन से वहां से आए और 17 जनवरी 1969 बाबा के पास मधुबन में पहुंच गए अपने लौकिक पिताजी के साथ, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें क्या देखा बाबा का, जो ये मैं मन की बात बता रहा था उसी रेफरेंस में, कि पहले तो बाबा को लंबा सब बताया करते थे, फिर बीच में 67, 66, 67 में देखा दो चार लाइन बोलते थे बाबा समझ जाते थे, लेकिन इन दो दिनों में 17-18 जनवरी को हमने ये अनुभव किया बाबा के सम्मुख जाते थे हमेशा की भांति, बाबा से ये पूछेंगे ये कहेंगे, तो बस बाबा दृष्टि देते थे, हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस बाबा ने नैनों में देखा, मन का भाव पड़ा और तुरंत ही उसका बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। मतलब मन के भाव को बिना एक अक्षर बोले भी समझ लेना, और जो कहा जाता है मन जीते जगत जीत, तो बाबा ने अपना मन इतना जीत लिया था कि दूसरे के मन के भाव को तुरंत ही पढ़ लेते थे और मन में जो भाव चल रहे हैं उसका समाधान कर देते थे। ये कर्मातीत अवस्था की आत्मा का एक और लक्षण है कि बस हमारे सम्मुख जो भी आएगा, जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी तो वो आत्मा किस इच्छा से आई है, कोई साक्षात्कार की इच्छा से आई होगी, प्रभु प्रेम की प्यासी आत्मा होगी, कोई और मन की भावनाएं लेकर आई होगी, तो उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे सम्मुख आएगी, हमारी अपनी मन जीते जगत जीत की ऐसी स्थिति होगी कि उसके मन के भाव को पढ़ करके और बस जो हम हमारे मुख से शब्द निकलेंगे उससे वो आत्मा तृप्ति का अनुभव करेगी, और उस आत्मा को ऐसा प्रतीत होगा उसके जन्म जन्मांतर की आशाएं सब पूर्ण हो गई। ये अनुभव हमने उस 17 और 18 जनवरी को 6-7 बार किया, क्योंकि बाबा से अनेक बार मिलना हुआ इन दो दिनों में, अनेक बार बाबा से, और जब जब बाबा के सम्मुख जाते थे अच्छा ये सेवा की बात पूछेंगे, ये पुरुषार्थ की बात पूछेंगे, ये और आत्मोन्नति की और बात पूछेंगे, कोई भी संकल्प लेके जाते थे बस बाबा दृष्टि दी बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए। ये आंखों देखी कर्मातीत अवस्था है बाबा की, जो यहां आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। एक तो ये कर्मातीत अवस्था का लक्षण होता है, हम सबको भी इतना अपने मन को जीतना है और क्या। साथ में बाबा की आयु काफी थी, 93 इयर्स थी, जनवरी का महीना था, ठंडी का मौसम था, माउंट आबू में कितनी सर्दी पड़ती है, और तो बाबा को कई बार खांसी भी आती थी, वैसे भी नॉर्मल केस में भी बीच बीच में कई बार खांसी आती थी, तो बाबा क्या करते थे ये परिस्थिति, खांसी रूपी परिस्थिति आती थी तो बाबा के पास में ट्रांसलाइट का एक चित्र रखा रहता था श्री कृष्ण का, विष्णु कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का चित्र। तो बस बाबा कहता था, बच्चे देखो कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण बनेगा, नया पांच तत्व नए होंगे, नया शरीर मिलेगा। अभी तो देखो पुरानी दुनिया है, पुराने तत्वों का बना पुराना शरीर है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। अभी तो देखो ये खांसी है, ये तकलीफ है, ये सब व्याधियां हैं, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा बनेगा विष्णु। और बाबा उस खुशी में आ जाता था तो पहले जो परिस्थिति खांसी रूपी परिस्थिति बहुत बड़ी अनुभव होती थी, खांसी आती थी, कई बार लगता था बाबा की आंखें भी जैसे गीली हो गई हैं, ऐसे खांसी का प्रभाव देखने में आता था, लेकिन तुरंत ही बाबा अपनी स्वस्थिति में, बच्चे कल जा बाबा जाके ऐसा बनेगा, कृष्ण जैसा बनेगा, बस बाबा उस स्थिति में स्थित हो जाते थे। और वही बाबा कई बार मुरली में कहते थे, बच्चे इतनी खुशी हो, इतनी खुशी हो, कितनी खुशी, खुशी में क्या करो, खुशी में एक शब्द है सिंधी में खग्गिया मारने का, खग्गिया मारो। हाँ खग्गिया कैसे, हाँ बाबा कई बार करके भी दिखाते थे, ऐसे हो बाबा, हो मैं जाके कल ये बनूंगी, कल ये लक्ष्मी नारायण जैसा, खुशी में इतना बाबा के चेहरे पर सबके चेहरे खिल जाते थे। और हरेक ये अनुभव करता था, कोई भी शारीरिक व्याधि हो, कोई भी परिस्थिति हो, बस उससे कुछ समय के लिए दूर हो जाते थे, बाबा का ये देखने में आता था। तो एक कर्मातीत अवस्था का ये लक्षण होता है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति हम पर वार ना कर सके। आएगी, ये नहीं कि परिस्थितियां नहीं आएंगी, पेपर्स आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो, इतनी शक्तिशाली हो, जो उस परिस्थिति के ऊपर तुरंत ही विजय प्राप्त कर ले और वो परिस्थिति जैसे समाप्त हो जाए। ये प्रत्यक्ष देखने को मिलता था। और ये खांसी शरीर की परिस्थिति, कोई और पेपर आता था, कोई और बात होती थी, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन बस बाबा के सम्मुख, हमें याद है कोई भी बात होती थी, एक बार सन्यासियों का, हाँ चार पांच सन्यासी जा रहे थे गेट के बाहर से, कुछ वर्ष पहले की बात है, 69 की नहीं है, 65-6 की होगी। तो बाहर जो बहन थी पहरे पर, भूरी दादी हुआ करती थी, तो उनको जो उनका मुख्य सन्यासी था, उसने कहा मुझे आपके बाबा से मिलना है, जो यहाँ के गुरु हैं उनसे शास्त्रार्थ करना है। अंदर से भरे हुए थे, तो कहा कि स्वामी जी अभी तो दोपहर का ऐसे 3 बजा हुआ है, आप थोड़ी देर बाद आएंगे, बाबा आपसे मिलेंगे, या कल सुबह आना। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो अभी ही मिलना है, क्योंकि हम तो कल चले जाएंगे, शाम को नहीं आ सकते। तो बहुत जिद करने लगे, तो बहन अंदर गई बाबा के पास और कहा बाबा ऐसे वो सन्यासी आए हैं, जिद कर रहे हैं, हमें अभी मिलना है। तो बाबा देखो अपने आराम का भी तुरंत त्याग करके, हाँ बच्चे लाओ उन्हें हिस्ट्री हॉल में बैठाओ, और बाबा आता है। बस बिना आराम किए बाबा थोड़े समय में आया, बहन ने ले जाके उन्हें वहां बैठाया। तो हिस्ट्री हॉल में ऐसे 3 संदलियां पड़ी होती थी, एक पे बाबा बैठते थे, एक पे मम्मा बैठते थे, बीच की संदली खाली होती थी, जिस पर कि बच्चे जब आते थे, पार्टियां आती थी, वहां बैठ करके अपना अनुभव आदि सुनाया करते थे और संकल्प सुनाया करते थे, हम क्या संकल्प लेके जा रहे हैं, पुरुषार्थ में क्या तीव्रता लाएंगे आदि आदि। तो सन्यासी लोग सब नीचे बैठ गए, थोड़ी देर में बाबा आए। तो बाबा ने आके देखा और उनका जो मुख्य सन्यासी था उसे बोला, अरे रे बच्चे तुम यहां क्यों बैठे हो, नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर बैठो यहां संदली पर। तो वो तो थोड़ा अहम में था, कहता नहीं नहीं वो तो आपकी संदली है, आप वहां बैठो और हम नीचे बैठेंगे। क्योंकि सन्यासियों में भी एक नियम होता है, जिस आश्रम में जाओ और जिस गुरु की जो संदली होती है उस पर वो ही गुरु बैठता है, दूसरे नहीं बैठते। तो बाबा ने कहा अरे बच्चे देखो ये भी घर गृहस्थी वाला था, हाँ और गीता में भले पढ़ते रहे तो काम महाशत्रु है, लेकिन जीवन में तो कभी भी उसकी पालना नहीं की, और पढ़ते रहे ये, सुनते रहे, सुनाते रहे, और आप लोग तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपने तो भारत को थामा है, और आप आओ और यहाँ बैठो। वो सन्यासी हिचकने लगे, बाबा ने बड़े प्यार से जो मुख्य सन्यासी था उसकी बाह को पकड़ के स्नेह से उठाया, उसे ऊपर संदी पर बैठाया, बैठा दिया और बाबा सामने बैठ गए। देखो कितनी नम्रता, कितना उदार चित्त। और वो जो इतने भरे हुए आए थे, हम ये शास्त्रार्थ करेंगे, ये कहेंगे वो कि भाई यहाँ पर तो ये ज्ञान सुनाया जाता है गीता का, भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है, आदि आदि, तो बस वो सब भर के आए थे। फिर बाबा ने हालचाल पूछ के कहा, बच्चे कैसे आना हुआ? तो वो सन्यासी उसकी तरफ देखे, वो दूसरा तीसरे की तरफ देखे, क्योंकि बाबा ने उनका दिल अपने प्यार से, उदारता से उनका जीत लिया था। फिर भी उनमें से जो मुख्य था उसने कहा, हम तो ये इसके बाबा यहाँ पर आके हमने ये सुना आप ऐसा ज्ञान सुनाते हो, तो उसके ऊपर हम शास्त्रार्थ करने आए हैं। तो बाबा ने कहा, देखो ये बाबा भी हाँ ब्रह्मा, ये भी गीता पढ़ता था और कभी भी गीता की पालना नहीं करी और सुनते रहे सुनाते रहे, और अभी तो जो शिव बाबा आकर के इस तन के द्वारा जो बोल जाता है वही बोलता है, उसी ने कहा है कि काम महाशत्रु है, पवित्रता की पालना करो, गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। बस थोड़ा ही बाबा ने ज्ञान सुनाया, वो जैसे इसी का इंतजार कर रहे थे, और उसके बाद बाबा को नमन करके प्रणाम करके और वो जैसे आदर के साथ वहां से उन्होंने विदा ली। तो भाव क्या है? बाबा कहता है किसी से शास्त्रार्थ ये करने की आवश्यकता नहीं, अपनी नम्रता से, प्यार से, आदर से, सत्कार से उनका दिल जीतो और फिर वैसा वर्णन करो। तो ये हम बच्चों को भी पालना की ज्ञान सुनाएं, लेकिन ज्ञान के साथ साथ नम्रता हो, आदर हो, सत्कार हो, दूसरे को हमारे कोई द्वारा ज्ञान सुनाने में अभिमान की, अपमान की महसूसता ना आए। और इस प्रकार से बाबा को उस दिन 18 जनवरी की अब बात सुनाता हूं आपको खास करके, कि बाबा से जब उस दिन कई बार मिले तो बस बाबा जैसे कर्मातीत अवस्था को लगभग पूरा पहुंच चुके थे। उस दिन सुबह बाबा ने 18 जनवरी को मॉर्निंग क्लास नहीं कराई, मॉर्निंग क्लास में आए बाबा, योग कराया सारा समय, उस दिन मुरली नहीं चलाई। पूरा मुरली चलाने का जब भी संकल्प आता होगा हमें लगता था बाबा अब मुरली चलाएगा, फिर बाबा योग कराने लगते थे। तो उस दिन अमृत वेला यानी कि सुबह के समय 7 बजे बाबा ने आके 7 से 7:45 तक जैसे योग ही कराया, हर बच्चे में शक्ति भरी। कोई बात नहीं, सबको ये हुआ आज बाबा ने मुरली नहीं चलाई, लेकिन बाबा तो नॉर्मल वे में मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के चले गए। और उसके बाद अब वो दिन 18 जनवरी का बाबा को आभास, कर्मातीत अवस्था हो गई थी। जब कर्मातीत अवस्था होती है आभास हो जाता है कि बस अब ये मैं पुराना शरीर छोड़ करके मैं आत्मा जा रही हूं, इस शरीर के साथ हिसाब किताब पूरा चुक्त हुआ। तो उस दिन बाबा ने बस ब्राह्मणी को बोला, भैया जो भी लेटर बचे हुए हैं, जो हमारे यीशु दादी थी वो लेटर लिखवाते थे बाबा से, तो जितनी भी बच्ची लेटर पढ़े हों, पत्र आए हुए पढ़े हों, पहले ईमेल और ये सब तो होता नहीं था, तो जितने भी पत्रों सबके जवाब लिखवा लो, आज कोई भी पत्र बिना जवाब दिया हुआ न रह जाए। और कहा कि जो कोई भी काम अधूरा पड़ा हो वो सब आज निपटा दो, जो भी कोई भी काम ऐसा न रहे जो बचा रह जाए। ये शब्द भी इस बात का सूचक है कि बाबा को जैसे ये पहले आभास हो गया था कि हाँ अब इससे हिसाब किताब मेरा पूरा हुआ। सारा दिन भर बाबा ने जो भी काम पेंडिंग थे, जो नक्की लेक के पास हमारा म्यूजियम है ऊपर, वो बिल्डिंग भी लेने की थी, तो कुछ दिनों से फाइल पड़ी हुई थी, लेकिन उसी दिन बाबा ने वो फाइल क्लियर करी, और फाइल क्लियर करके बस कि हाँ इसको ले लो, वहां पर ऐसे ईश्वरीय सेवा वहां करनी है, और वो भी क्लियर करा। यानी कि कोई भी कार्य ऐसा अधूरा नहीं छोड़ा जो कि बाद में खींचे। उसके बाद रोज रात को क्लास होती थी भोजन के बाद, रात को 8:30-9 बजे। उस दिन बाबा ने कहा भाई को, जमुना प्रसाद भाई को बुला के, आज बाबा अभी ही क्लास कराएगा जल्दी, तो 6:30-7 बजे। तो उसने भी एक घंटी स्कूल की तरह रखी रहती थी, वो बजाया, सबको इन्फॉर्मेशन दे दी, सब लोग भोजन आदि करके आ गए, और 7:30 बजे ही उस दिन बाबा क्लास में आए। और बस बाबा का बिल्कुल बाल कृष्ण का सा रूप, एकदम लंबी सी, ठंडी के दिन थे, लंबी सी एक टोपी भी लगाई हुई, पूरा सफेद सारा का सारा। गुलजार दादी की माताजी ऑलराउंडर दादी दिल्ली के हेड थे, तो जब हम आ रहे थे हमारे साथ, वो सब उन्होंने भेजा था, नया स्वेटर, नया शॉल, नया ऐसा टोपा। बस बाबा जैसे बिल्कुल बाल कृष्ण का स्वरूप बाबा का लग रहा था। बाबा आए क्लास में, और उस दिन बाबा ने जो मुरली चलाई, तो ये आश्चर्य की बात है, बाबा को काफी कुछ तबीयत ठीक भी नहीं थी, खांसी भी थी, लेकिन उस दिन मुरली में एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, जो इस बात का सूचक है कि जब आत्मा की कर्मातीत अवस्था हो जाती है तो शरीर के सब कर्म भोग के ऊपर योग बल विजय प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी बाबा की फ्लॉलेस मुरली चली, बिल्कुल एक बार भी न खांसी आई, न गला साफ करने की जरूरत पड़ी, और बाबा ने बस मुरली चला के, मैं भी सामने बैठा हुआ था, मुरली सुन रहे थे, एकाएक ही हमारे मन में विचार आया बाबा कुछ हमारे लिए भी बोले। मन का संकल्प है, जैसे अभी भी विचार आते हैं ना, बाबा जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं कि हमें भी स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए, या बाबा के नैन मुलाकात हो जाए सम्मुख जाके आदि आदि, तो उस समय जैसे ये संकल्प आया, मन में तो संकल्प आया, तुरंत ही बाबा तक पहुंचा होगा, और बाबा ने तुरंत ही बस नाम लेकर के कुछ महावाक्य इस आत्मा के प्रति बाबा ने उच्चार कर दिए। तो वो इस बात का सूचक है कि जब कर्मातीत अवस्था हमारी भी होगी, तो हमारे सम्मुख भी जो हमारे भक्त आत्माएं आएंगी, या बाबा के जो बच्चे जो द्वापर युग से हमारे मंदिर बनाएंगे, भक्त आत्माएं हमारी पूजा करेंगे सतयुग त्रेता में, भले साथ में हमारी प्रजा के रूप में होंगे, लेकिन द्वापर युग से तो हमारे भक्त के रूप में हमारी पूजा करेंगे, हम देवी देवताओं की मूर्तियां बना करके, तो उनके जब भक्ति मार्ग में हम संकल्प पूरा कर देते हैं, हमारे मंदिरों में आके वो हमसे कामना करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की लौकिक अलौकिक कई प्रकार की कामनाएं इच्छाएं, तो जब हमारी मूर्तियां उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, तो अभी जब हम चेतन में हैं, तो क्या हम उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते? ये अनुभव प्रत्यक्ष बाबा से हुआ, संकल्प हुआ, बाबा तक पहुंचा, बाबा ने तुरंत महावाक्य उच्चार करके संकल्प पूरा किया, और इस प्रकार से बाबा ने मुरली पूरी की। फिर बाबा उठ खड़े हुए, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे, बार बार बाबा की दृष्टि बड़ी दादी जी की तरफ आती थी, वहां पर दृष्टि देके फिर बाबा एक कदम आगे बढ़ाया, फिर बाबा ने दृष्टि दी, फिर एक दृष्टि दे करके सब बच्चों को, फिर बाबा हिस्ट्री हॉल से बाहर तक जाते, छोटा ही हॉल है, बाहर तक जाते जाते 2-3 बार रुके और बस बाहर गए। बाहर जाके बाबा ने क्या कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी भी नहीं बोले, उसी दिन पहली आखिरी बार ये शब्द बोले, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, हाथ हिला के बाबा अपने कमरे की ओर बाबा ने प्रस्थान किया। तो देखो, जब आत्मा को आभास होता है उस दिन बाद, शिव बाबा को तो आभास, शिव बाबा तो सर्वशक्तिवान है, ब्रह्मा बाबा भी जैसे बाप समान बन गया था, कर्मातीत अवस्था माने बाप दादा में कोई अंतर ही जैसे नहीं रह गया था, बिल्कुल बाप समान। तो इसीलिए ये आभास था कि ये मेरा बच्चों से अंतिम साकार मिलन है इस शरीर के द्वारा। तो बाबा ने नैनों से बहुत प्यार बरसाया, बहुत मुख से प्यार बरसाया, विदा लेकर के बाबा अपने कमरे की तरफ गए और हाथ में हाथ देके बाबा ने छुट्टी ली। तो देखो इस प्रकार से बाबा किस प्रकार से मन जीते जगत जीत, ये इसी स्थिति का अनुभव करते कराते बाबा ने छुट्टी ली। तो इस स्थिति तक पहुंचने के लिए बाबा में एक और विशेषता देखी। जब भी बाबा मिलते थे ना, तो बस कई बार बाबा बैठे होते थे, ब्राह्मणी पार्टी को लेकर आती थी अपने समय पर, तो जैसी ब्राह्मणी आती थी तो बस बाबा के सम्मुख, बाबा बाबा, तो बाबा के नैन भी खुले हुए हैं, कोई ध्यान में भी नहीं है, आंख बंद भी नहीं है, लेकिन खोए हुए जैसे होते थे, इस देह में है नहीं। बाबा को कई बार जैसे ना सडनली जर्क सा लगता था, कई बार अच्छा बच्ची आए पार्टी लेके, आओ आओ पार्टी लाओ, फिर बाबा एक एक से मिलते थे और जैसे ही पार्टी विदा लेती थी फिर बाबा अपना समय सफल करने में लग जाते थे। यानी एक सेकंड में देह में आना, एक सेकंड में देह से न्यारा होना, ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए कर्मातीत अवस्था के लिए, और ये प्रत्यक्ष अनुभव होता था बाबा के सम्मुख। बस जब चाहे हम देह में आए पार्ट बजाया, जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं, और बस जो बाबा ने अनेक वर्णन किए हैं, कभी परम धाम, कभी सूक्ष्म वतन, कभी अपनी नई दुनिया, कभी सकाश देने पूरे सृष्टि का चक्र आदि आदि, उधर हमारा पूरा का पूरा मन बुद्धि लगा रहे। तो उस दिन एक बात और विशेष देखी। तो बाबा जब गए कमरे से, हिस्ट्री हॉल से विदा लेके, हम सब ने सुना है दादी जी के हाथ में हाथ, दादी प्रकाशमणि जी के, बाबा ने छुट्टी ली, विदा ली। बस लेकिन 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, और 18 की सारी रात शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का अग्नि संस्कार किया गया, क्योंकि चारों तरफ से बच्चे आ रहे थे, बच्चे टेलीग्राम दे रहे थे, फोन कर रहे थे, शरीर रखो हम आ रहे हैं, तो इसीलिए शरीर रखा रहा। लेकिन उस शरीर की एक विशेषता कि इतने लगभग 65 घंटे तक भी वो शरीर रखा रहा, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई भी केमिकल लोशन नहीं लगाया गया, लेकिन वो शरीर वैसा ही चमकता रहा, एकदम लगता था जैसे बाबा सो रहे हैं और अभी बाबा हमेशा की तरह उठ के कहेंगे आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे। तो सब बिल्कुल गोरा रंग, वैसा ही चमकता हुआ शरीर, और सबसे बड़ी बात शरीर में अकड़न भी कोई विशेष नहीं थी। जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो शरीर बड़ा स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है, लेकिन प्रकृति जीत भी इन 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर को भी, बाबा ने प्रकृति को भी इतना इंद्रिय जीत हो गए थे, प्रकृति जीत हो गए थे कि हम लोगों ने जब स्नान भी कराया 21 तारीख को अग्नि संस्कार से पहले, तो बाबा के शरीर में काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, ऐसा जो इस बात का प्रतीक है कि बाबा मन जीते ही जगत जीत नहीं, बल्कि मन के साथ प्रकृति जीते जगत जीत, क्योंकि प्रकृति भी मन का ही एक हिस्सा है। बड़ी बात है ना। तो ये एक ऐसी चीज है जो कई बार वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों से पूछा हमने, वो कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। हजारों भाई बहनों ने अपनी आंखों से देखा किस प्रकार से बाबा प्रकृति जीत भी बन करके अंत में हम बच्चों से विदा ली। ऐसे ही हम बच्चों को भी प्रकृति जीत बनना है। मन जीते, मन तो जीतना ही है, प्रकृति जीत बनना है। और ये बाबा की आंखों देखी कर्मातीत अवस्था के कुछ चिन्ह जो आपने सुने, केवल ये सुनने तक ही सीमित न रहे, प्रकृति के पांच तत्वों को भी ना हम ऐसा बना लें उनके साथ साथ हमारे की प्रकृति के जो ये है बात, हम भी अंत समय में ना प्रकृति जीत मन जीत करते हुए यहां से जाएं। और बस जो बाबा कहता है ना अंत मते सोगते, तो अंत में हमारी भी यही स्थिति हो, कहीं पर भी बुद्धि रुकी हुई न हो और बस चारों तरफ से बुद्धि समेटी हुई हो और विजय विजयी बन के जाए। अभी समय धीरे धीरे कैसे योग का हो रहा है और मुझे यही आदेश हुआ था, तो मैं यहां पर ही एक बात के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि जो प्रकृति जीत बनने के लिए प्रकृति के ये जो पांच तत्व है ना, इन तत्वों से हम हर एक से गुण लें, शिक्षा लें और ये प्रकृति को हम अपना मित्र बना लें। एक एक चीज को, मानो धरती है, बाबा ने कहा अंत में पृथ्वी भूकंप बहुत आएंगे, तो भूकंप हमारी मृत्यु का कारण न बने, पृथ्वी को हम मित्र बनाए, तो पृथ्वी का एक गुण हम अपने अंदर धारण कर ले। पृथ्वी का सबसे बड़े से बड़ा गुण कौन सा है? पृथ्वी दाता है, हर चीज देती है, जल देती है, मिनरल्स देती है, सब्जी अनाज सब कुछ पृथ्वी से मिलता है। ऐसे हम भी दाता बन करके सबको देते चले। क्या दाता? कोई स्थूल चीज नहीं, बल्कि जो हमारा शांति है, प्रेम है, आदर है, सत्कार है, सद्भावना है, जो पॉजिटिव चीजें हैं जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता, ये चीजों का दान करते चलेंगे तो पृथ्वी को जैसे हम अपना मित्र बना लेंगे, तो ये पृथ्वी हमारी अंत समय तक भी सहायक बन के रहेगी। चाहे जितने भूकंप आएंगे, ये हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। ऐसे जल का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? जल में एडजस्टमेंट का गुण है, फ्लेक्सिबिलिटी का। गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाता है, कटोरी में लो, कटोरी में सेट हो जाता है। ऐसी हमारा भी स्वभाव संस्कार ऐसा हो हर आत्मा के साथ हम एडजस्ट होके चल सके। ऐसा न कहें कि इनके साथ एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल है, इनके साथ सहज है, नहीं। हर आत्मा के इतना फ्लेक्सिबिलिटी हो, हर आत्मा के साथ एडजस्ट होके चल सके, ये जल का गुण धारण हो जाएगा। तो जल, चाहे जितना भी जल उछल खाए, सुनामी आए, फ्लड आए, बाढ़ आए, लेकिन जड़ हम जल जो है हमारे दुख अशांति मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। समय से पहले ही बाबा ऐसा टचिंग कराएगा, हमारे पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। इसी तरह वायु का सबसे मुख्य गुण क्या है? वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हल्की हल्का करके ऊपर उठाती है। ऐसे हम हर परिस्थिति में हल्के रहें, भारी ना हो। कोई पेपर हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, संबंधों में कटुता हो, वो हमें भारी न कर दे, बल्कि हम सदा जीवन में अगर हल्के रहेंगे तो वायु के जितने भी पेपर आएंगे, साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे, बवंडर आए, हवा बहुत 300 की रफ्तार से बहेगी, लेकिन ये वायु हमारे दुख का, मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि वायु का ये हल्के रहने का गुण हमने अपने अंदर धारण कर लिया, तो बस सदा जीवन में हल्के रहेंगे तो वायु तत्व को अपना मित्र बना लिया। ऐसे ही आकाश, क्या विशालता का गुण है आकाश में। ऐसे हमारा दिल भी इतना विशाल हो कि हमें किसी की कमी कमजोरी, उसको हम अपने अंदर न रखें, क्षमा का भाव हमारे अंदर सदा हो। बस किसी की कोई भी बात देखे, महापुरुषों का, महान आत्माओं का ये गुण विशेष होता है, कोई भी देखेंगे किसी का, क्षमा करते चलेंगे, उसके कमजोरियों को दिल में चित्त पर नहीं रखेंगे। ऐसे हमारे अंदर भी इतनी विशालता हो कि हर एक की कोई भी बात देखें उसको दिल में न कर रख के क्षमा करते हुए आगे बढ़ते चले। इतना विशाल आकाश की तरह विशालता का गुण अगर धारण किया होगा तो आकाश मार्ग से आने वाली जितनी समस्याएं होंगी, बम होंगे, मिसाइल होंगे, क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने की घटनाएं होती हैं, बहुत अति वृष्टि, ऐसी जो हमारे दुख अशांति मृत्यु का कारण हो सकती है, वो हमारे मृत्यु का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि आकाश जैसी विशालता हमने धारण कर ली है। ऐसे पांचवां तत्व है अग्नि तत्व, जो सूर्य के रूप में प्रकृति में विद्यमान रहता है। तो सूर्य का, अग्नि का विशेष गुण का क्या होता है? अग्नि में अगर कोई चीज डालो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा ज्वालामुखी, जो रूप बाबा कहता है आपकी योग अग्नि ऐसी जली हुई हो कि जो भी आत्मा आए आपके सम्मुख, रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई चली जाए, उसका रूप परिवर्तन हो जाए आपका ज्वालामुखी रूप देखते ही। अग्नि में यही गुण होता है ना, रूप परिवर्तन। दुखी आत्मा आए सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति की लहरों में झूमती हुई चली जाए। तो ये ऐसे हम रूप परिवर्तन करने की शक्ति क्षमता हो, ये योग अग्नि के द्वारा होगी। तो ये प्रत्यक्ष बाबा से देखने को मिलते थे कि बाबा के सम्मुख जाते थे, कोई भी मन में इच्छा होती थी, कोई संकल्प होता था, बाबा के सम्मुख गए और बस सब बात जैसे भूल जाते थे, मुस्कुराते खुशी में लहराते हुए आत्मा बाबा के सम्मुख से वापस आती थी। यही अनुभव हमारा दादी जी के साथ होता है। तो इस रीति से बाबा के अंदर बाबा कर्मातीत बने, तो हम बच्चों को भी कर्मातीत तो बनना ही है। इसीलिए ये सब बाबा के जो गुण हैं, शक्तियां हैं, इन सब को धारण करते हुए हम भी अपनी कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो कोई ना कारण नहीं कि बाबा की तरह हम भी कर्मातीत बन जाएंगे और जो अंत मते सो गते और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस बात को हम सार्थक सिद्ध कर सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति।
बाबा खड़े